दिन भर 1 अप्रैल रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। भारत प्रशासित कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में 3 मुठभेड़ों में 11 चरमपंथियों समेत 16 की मौत।
Our inputs presently indicate to us that out of all the terrorists killed, two of the terrorists who were involved...
लॉन्च किए जाने के 48 घंटे बाद संचार उपग्रह GSAT-6 से टूटा इसरो का संपर्क।
सदमा लगेगा इसरो को, जिसको की बारी बारी एक के बाद एक सक्सेस मिल रहे थे, हाल में उसको 2 बड़े फेलियर मिले हैं।
सुनाएंगे लगभग 6 साल बाद अपने वतन लौटी मलाला यूसुफजई से खास बातचीत।
मुझे कोई इज्जत वगैरह दे, मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा। All I want is कि लोग जो है मेरे मैसेज को समझे और अपने।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो द्वारा गुरुवार को लॉन्च किए गए संचार उपग्रह GSAT-6A से उसका संपर्क टूट गया है। इसे वैज्ञानिकों के साथ साथ सशस्त्र सेनाओं के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। भारतीय सेना के लिए संचार सेवाओं को मजबूत बनाने वाले महत्वाकांक्षी GSAT-6A को गुरुवार शाम श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन 48 घंटे से भी कम समय में इसका इसरो से संपर्क टूट गया। भारत प्रशासित कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में आज हुई 3 मुठभेड़ों में अब तक 11 चरमपंथियों के मारे जाने की सूचना है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP SP वैद्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इन मुठभेड़ों में अब तक 11 चरमपंथी मारे गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बल के 3 जवान और 2 आम नागरिक भी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि सेना को इस बारे में शनिवार की रात जानकारी मिली थी कि श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर शोपियां जिले के द्रागड़ा गांव में कुछ चरमपंथी छिपे हुए हैं। पोप फ्रांसिस ने ईस्टर के मौके पर दुनिया के बड़े नेताओं से अपील की है कि वे सभी मिलकर सीरिया में चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि सीरिया में चल रहे युद्ध में कई मासूम लोग शिकार बन रहे हैं। रोम के सेंट पीटर्स स्क्वायर से संदेश देते हुए पोप ने कहा कि ईसाई धर्म हमेशा दबे कुचले समुदायों की मदद करने वाला रहा है, इनमें प्रवासी और शरणार्थी भी शामिल हैं। पोप ने दक्षिणी सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के लोगों की कुशलता के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। पोप ने अपने संदेश में कहा,
E noi oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero.
आज हम पूरी दुनिया में शांति का संदेश देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सीरिया के क्षेत्र में पिछले लंबे वक्त से चले आ रहे युद्ध का अब अंत हो और वहां रह रहे लोगों को शांति प्राप्त हो। हम दुनिया के सभी राजनीतिक नेताओं से अपील करते हैं कि वे सीरिया में रहने वाले आम लोगों की भलाई के लिए जरूरी कदम उठाएं। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पूर्वी छोर पर विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में अब सीरियाई सेना ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। सरकारी टीवी चैनल के अनुसार डूमा शहर के फैलक अल रहमान गुट के लड़ाके शहर छोड़ने लगे हैं। इस पूरे इलाके में कुछ वक्त पहले तक विद्रोहियों का कब्जा था। ये सभी विद्रोही संगठन सरकार के साथ बातचीत करने के बाद इलाका छोड़ने पर तैयार हो गए हैं। हालांकि विद्रोही संगठनों ने अपनी तरफ से इन खबरों की पुष्टि नहीं की है। रूस के कैमरूव क्षेत्र के गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले रविवार इस इलाके में एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई थी। इस दुर्घटना में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकतर बच्चे शामिल थे। आग लगने की घटना के बाद हजारों लोगों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुर्घटनाग्रस्त इलाके का दौरा किया और स्थानीय अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने पर उनकी आलोचना भी की। अमन तुयलेव पिछले 20 साल से भी लंबे वक्त से कैमरूव इलाके में गवर्नर थे। उन्होंने दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए कहा,
मैंने
अपना इस्तीफा राष्ट्रपति पुतिन को भेज दिया है। मेरे ख्याल से यह एक सही कदम है, क्योंकि इतनी अधिक जिम्मेदारियों के साथ गवर्नर का पद संभालना अब मेरे लिए असंभव है। ये नैतिक रूप से भी बहुत मुश्किल है। ये थे रूस में कैमरूव क्षेत्र के गवर्नर के शब्द। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 3 लाख से अधिक सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि सैनिकों की यह संख्या पिछले सालों में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुए सैन्य अभ्यासों की तुलना में आधी है। इसकी एक बड़ी वजह दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच घटते तनाव को भी माना जा रहा है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। भारत प्रशासित कश्मीर में इस साल के सबसे बड़े सैन्य ऑपरेशन में अब तक 11 चरमपंथियों और 3 सुरक्षा बलों की मौत की खबर है। मुठभेड़ की जगह प्रदर्शन करने वालों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग में 2 नागरिक भी मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। अशांति की ताजा लहर से लोगों में ये डर पैदा हो गया है कि लगातार तीसरे साल की गर्मियां भी कहीं अस्थिरता की भेंट तो नहीं चढ़ जाएंगी। सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
कश्मीर पुलिस के महानिदेशक शेषपाल वैद ने दक्षिणी कश्मीर के शोपियान और अनंतनाग जिलों में 3 अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ों में 8 चरमपंथियों और 2 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। उनका कहना है कि गुप्त सूचना के बाद ऑपरेशन शनिवार की शाम से ही शुरू किया गया था। पुलिस महानिदेशक के अनुसार शोपियान और अनंतनाग में 3 जगहों पर चरमपंथियों को घेर लिया गया, जिसके बाद क्रॉस फायरिंग शुरू हुई। मारे गए चरमपंथियों में से 7 शोपियान जिले के नागरिक थे। एक और चरमपंथी भी कश्मीरी ही है। दक्षिणी कश्मीर में तैनात सेना की विक्टर फोर्स के GOC मेजर जनरल BS राजू ने बताया कि यह ऑपरेशन कई सप्ताह की तैयारी के बाद हुआ।
Our inputs presently indicate to us that out of all the terrorists killed, 2 of the terrorists who were involved in killing of Lieutenant Umar Fayaz have been neutralized.
मेजर जनरल राजू ने दावा किया कि मारे गए चरमपंथियों में 2 ऐसे थे जिन्होंने पिछले वर्ष एक कश्मीरी सैनिक लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या की थी। मुठभेड़ों के दौरान स्थानीय लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किए। पुलिस और फोर्सेज ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और लोहे के छर्रों का प्रयोग किया। इस कार्रवाई में 2 प्रदर्शनकारी मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हैं। मुठभेड़ों की खबर आम होते ही घाटी में हड़ताल हो गई और अलगाववादियों के गठबंधन ने कल भी बंद का आह्वान किया है। सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए भीतरी रेल सर्विस और इंटरनेट को बंद कर दिया है और कल शिक्षा संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की गई है। पुलिस महानिदेशक SP वैद का कहना है कि अनंतनाग में हुई मुठभेड़ के दौरान एक चरमपंथी को जिंदा गिरफ्तार किया गया। ताजा मृत्युओं के बाद कश्मीर में जारी अस्थिरता में और तेजी आई है। सरकार ने इस साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले दिनों ऑल इंडिया टूरिज्म कॉन्क्लेव मुनक्कद किया था, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के टूर ऑपरेटर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शांति बहाली के लिए आम लोगों के सहयोग की अपील की थी। इसी दौरान सरकार ने अलगाववादी नेताओं सईद अली गिलानी, मीरवाज उमर फारूक और यासीन मलिक पर कई वर्षों से लगे प्रतिबंध हटा दिए और पुलिस ने कहा कि ये लीडर कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं, लेकिन इनके जलसों से शांति भंग नहीं होनी चाहिए। कई वर्षों बाद शुक्रवार को तीनों नेताओं ने कई जगहों पर जुमे के जन समारोहों पर भाषण दिया। मीरवाज उमर फारूक ने यहां जारी अस्थिरता के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया।
हुकूमत हिंदुस्तान हिमत हुकूमत आई चुंद रूद अकुई अप्रोच कैसा करो ताकत के जरिए मसला।
इनका कहना था कि सरकार कश्मीर की समस्या सैन्य बल से हल करना चाहती है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि ऊंची शिक्षा पाने के बाद भी युवा बंदूक उठा रहे हैं। सरकार द्वारा अलगाववादियों पर से प्रतिबंध हटाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों से यहां के कई वर्गों को लगता था कि 3 वर्ष से चरमपंथियों के विरुद्ध जारी सेना का ऑपरेशन ऑल आउट भी स्थगित किया जाएगा, ताकि इस वर्ष गर्मियों में शांति बहाल हो जाए। लेकिन ताजा घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि लगातार तीसरे वर्ष भी कश्मीर में स्थिति अस्त व्यस्त ही रहेगी। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
कश्मीर के शोपियां जिले के जिस गांव में ये मुठभेड़ हुई वहां पर किस तरह के हालात थे जानने के लिए आप आ सकते हैं bbchindi.com पर। बढ़ते हैं आगे। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने गुरुवार को बड़ी ही उम्मीदों के साथ GSAT-6A उपग्रह लॉन्च किया था, मगर अब इसरो ने बताया है कि रविवार को उसका इस उपग्रह से संपर्क टूट गया है। एजेंसी जुटी हुई है कि एक बार फिर से इससे संपर्क किया जाए, क्योंकि ये संचार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। कुछ देर पहले मैंने बात की विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला से और पूछा कि इसरो के लिए इस उपग्रह से संपर्क टूटना कितना बड़ा झटका है।
देखिए, खबर जो है कि GSAT-6A सैटेलाइट से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का संपर्क टूट गया है, कई मायनों में बड़ी अहमियत है। एक तो सैटेलाइट की कीमत है 270 करोड़ रुपए, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो अगर ये सैटेलाइट वापस कारगर नहीं होता है तो ये पूरा पैसा जो है अंतरिक्ष में ही फूक जाएगा, एक बात। दूसरा, ये सैटेलाइट था, इसका एक बड़ा भाई GSAT-6 अंतरिक्ष में ऑलरेडी है, उसके संग मिलके दोनों को साथ काम करना था। ये ट्विन सैटेलाइट्स हैं, तो अब ये पूरा सिस्टम जो है अपनी जगह कारगर नहीं होगा अगर GSAT-6 से वापस चार्ज नहीं पाता है। तीसरी बात, कहीं ना कहीं सदमा लगेगा इसरो को, जिसको कि बारी बारी एक के बाद एक सक्सेस मिल रहे थे, हाल में उसको 2 बड़े फेलियर मिले हैं। अगस्त 2017 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का फेलियर हुआ, जिसमें एक नाविक सैटेलाइट था जो कारगर नहीं हुआ, और आज अगर ये GSAT-6 सैटेलाइट फेल हो जाता है तो ये भी एक बड़ा झटका है इसरो के लिए।
क्या मतलब फायदे होने थे कम्युनिकेशन के मामले में या सेना के लिए?
देखिए GSAT-6A और GSAT-6 सैटेलाइट जो हैं, इनका सिग्नल जो था वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस तक पहुंच सकता था। माने अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है आपको तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हैंड हेल्ड डिवाइस से जैसे सैटेलाइट टेलीफोनी होती है वैसे बात हो सकती है। ज्यादातर तो इसका यूज आर्म फोर्सेस के लिए था लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे भी इसका यूटिलाइजेशन हो सकता था। तो डोकलाम जो चाइना बॉर्डर पे है उससे लेके टाइगर हिल तक कहीं पे भी अगर आपको कम्युनिकेशन करना हो तो ये सैटेलाइट जो था उसके लिए मदद करने वाला था। लेकिन अगर इसका एक छोटा भाई फेल हो रहा है और केवल एक ही रह जाता है तो ये लंगड़ा सैटेलाइट सिस्टम बन जाएगा।
आप सुन रहे थे विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला को। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से NH-19 पर दिल्ली की ओर करीब 200 किलोमीटर चलने पर एक सड़क बाईं ओर मुड़ती है और यहां पर वो पहुंचती है रानीगंज। पहली नजर में यहां सब कुछ सामान्य लगता है सिवाय पुलिस बल की भारी मौजूदगी के। रामनवमी का जश्न यहां दंगे का दाग दे गया है। BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा रानीगंज पहुंचे हैं, उन्होंने क्या देखा वहां पर, सुनिए उनकी इस रिपोर्ट में।
26 मार्च को हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में रानीगंज के हठिया बाजार इलाके की दर्जनों दुकानें फूंक दी गई थीं। रामचंद्र पंडित की दुकान भी उनमें से एक थी।
करे हमारे जल गया, हमारे कोई आदमी नहीं करने वाला, अकेले आदमी क्या करेंगे।
रो के इसका दिन गुजर रहा, खाली रो रहा है, रात को सो रहा, चैन आराम नहीं, लेकिन अभी भी रो रहा है। क्या कीजिएगा, उसको कितना चुप कराएगा, बच्चा लड़का तो है नहीं।
सद्दाम की दुकान भी दंगों में स्वाहा हो गई, लेकिन उन्हें चिंता रामचंद्र पंडित की दुकान की ज्यादा है। मैं जब रानीगंज के हठिया बाजार में जली हुई दुकानों की तस्वीर ले रहा था तब सद्दाम ही मुझे रामचंद्र पंडित की दुकान पर ले गए। हठिया बाजार की अधिकतर दुकानें जल गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान छोटे कारोबारियों का हुआ है जो पटरी पर दुकानें लगाते थे। पटरी पर दुकान लगाने वाले एक युवा कहते हैं,
क्या 100-150
कहाँ जाएगा,
200 रुपए डेली कमाते हैं,
200 रुपए डेली
कमाते परवरिश हो रहा।
ये युवा अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही एक और दुकानदार विनोद कुमार बोल पड़े।
ये बैठा रहेगा, इसका थाली में भात नहीं रहेगा, मेरा थाली में भात रहेगा।
बोलिए,
ऐसा हम कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग भी दुकान बंद कर दिए।
क्या नाम है आपका?
विनोद कुमार साहब।
आपका?
मेरा नाम सद्दाम हुसैन।
सद्दाम हुसैन विनोद कुमार को गले लगाते हैं। विनोद कहते हैं, जिस दिन रानीगंज में दंगा भड़का स्थानीय पार्षद आरिज जलीस वहीं थे। जलीस कहते हैं,
पुलिस जो है जिस तरह से उनको काम करना चाहिए था वो फोर्स नहीं पहुंच पाया 1.5 से 2 घंटा, जिसके वजह से ये पूरा मामला रूमर के चक्कर में पूरे शहर में फैल गया और हर तरफ होना शुरू हुआ। तो अगर पुलिस 2 से 2.5 घंटा जो हम लोग रोके हुए थे, अगर उसी दरमियान अगर वो अपने काम को सही से अंजाम देती तो शायद ये दिन हम लोगों को रानीगंज में देखना नहीं पड़ता।
स्थानीय पत्रकार विमल देव गुप्ता 3 दशकों से रानीगंज और आसपास के इलाकों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये पहली बार है जब उन्हें अपनी रिपोर्टों में सांप्रदायिक तनाव या दंगे जैसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं।
पहली बार इस तरह का माहौल हम लोगों ने देखा है और जब से मैं पत्रकारिता में आया हूँ इस क्षेत्र में कभी भी इस तरह का दंगा का बात कभी नहीं हुआ।
यहाँ के आम लोग, व्यापारी, समाजसेवी और स्थानीय नेता दंगों की दो बड़ी वजहें बताते हैं। पहली, रामनवमी के जुलूस में उत्तेजक नारेबाजी और दूसरी, पुलिस की स्थिति को भांपने और संभालने में पूरी तरह नाकामी। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान कहते हैं,
1-2 करोड़ का नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा जो है लोगों के दिल टूट गए हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। एक जो हमारा शहर है, गंगा जमुना तहजीब जो है, उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है।
शनिवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने हिंसा प्रभावित आसनसोल और रानीगंज का दौरा किया। IPS अधिकारी शायक दास राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को स्थिति समझा ही रहे थे कि रानीगंज के एक वयोवृद्ध पत्रकार ने अपना कार्ड राज्यपाल के हाथ में थमा दिया। राज्यपाल ने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने जवाब दिया,
84 बस हमने नहीं देखा था, 84 बस नजर नहीं देखा, बहुत खराब हुआ।
पत्रकार राज्यपाल को सबसे ज्यादा प्रभावित हठिया बाजार ले जाना चाहते थे लेकिन स्थानीय पुलिस ने कहा कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। राज्यपाल हठिया बाजार की हालत नहीं देख सके लेकिन बाजार के कोने पर स्थित मंदिर पर लहरा रहा भगवा झंडा और पास ही की मस्जिद की मीनार हठिया बाजार को देख रही है और एक दूसरे को भी देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे रानीगंज के लोग एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, मानो पूछ रहे हो ये रानीगंज को क्या हो गया है। दिलनवाज पाशा, बीबीसी।
बीजेपी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी आज हिंसा से जूझ चुके रानीगंज में पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से बातचीत की हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने। जब पूछा गया कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे लगने से माहौल खराब हुआ, तो क्या कहना था शाहनवाज हुसैन का, सुनिए।
नारे किया मतलब ये नहीं है ना कि कोई गोली और पत्थर चलाने लगे। इसके अगर नारों की इजाजत नहीं है तो गोली और पत्थर की इजाजत किसने दी? कानून को हाथ में लेने का काम किसने किया? नारे तो लगते हैं, रामनवमी पे राम जी का नाम नहीं लेंगे तो ममता जी का ले।
इस समय पश्चिम बंगाल में शांति नहीं है, कई तरीके की वारदातें हो रही है, बिहार में ऐसा हो रहा है, राजस्थान से इस तरीके की खबरें आ रही है। क्या आपको लगता है कि पूरे देश में माहौल इस समय थोड़ा खराब चल रहा है और केंद्र में आपकी सरकार है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की बनती है?
हाँ, हमारी सरकार है जो हमें अस्थिर करना चाहते हैं वो ये सब साजिश में लगे। हम तो शांति वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास वाले लोग। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में भागलपुर में तो सिर्फ थोड़ा पथरा हुआ था, औरंगाबाद दंगे का रूप नहीं था, लेकिन भागलपुर को बदनाम करने वाले लोग लग गए पीछे।
बात बिहार की हो रही है तो बिहार के भागलपुर जिले से शुरू हुई हिंसा औरंगाबाद, समस्तीपुर और मुंगेर होते हुए नालंदा तक पहुंच गई थी। यहां से भी हिंसा की खबरें आई थी। यहां पहुंचे बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार से मैंने पूछा कि अब वहां पर कैसे हालात हैं।
आदर्श बिहार में सांप्रदायिक झड़पों का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें नवादा भी शामिल है, और नवादा के बारे में आपको पता होगा कि गिरिराज सिंह यहाँ के सांसद हैं जो कि विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे दरअसल हुआ है कि रामनवमी का जो जुलूस था वो शांतिपूर्ण निकल चुका था, लेकिन अचानक से शुक्रवार को एक हनुमान चबूतरा है जहाँ पे बिल्कुल छोटी सी मूर्ति थी, अचानक से लोगों को पता चलता है कि 5 बजे वो मूर्ति तोड़ दी गई है और कुछ लोगों की भीड़ वहां पर आती है और पत्थरबाजी शुरू कर देती है। बगल में ही मुस्लिमों का इलाका है, भदौली नाम है उसका, वहां पे एक बारात आई हुई होती है, बारात की एक बस होती है जहां पे लोग हमला कर देते हैं और उसके बाद दोनों समुदायों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन की चौकसी इतना ज्यादा इतनी बढ़िया थी कि कोई उसके बाद एक जो आशंका थी कि वो दंगे की आग या फिर दोनों की झड़प की आग और आगे बढ़ी वो नहीं बढ़ पाई। मतलब लोग प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं।
आपने वहां देखा होगा किस तरह के हालात हैं।
अभी यहाँ पे इंटरनेट सेवा ठप है, अभी स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। कहा जा रहा था कि आज रात तक इंटरनेट सेवा शुरू कर दी जाएगी लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है। डीएम से मेरी बात हुई, यहाँ के डीएम कौशल कुमार है, उन्होंने कहा कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि उन्होंने संख्या नहीं बताई। और जो मैं यहाँ पे आरोप लग रहा था कि बजरंग दल पे आरोप लग रहा था कि वो इसमें शामिल है, मैंने बजरंग दल के जो यहाँ नेता है जितेंद्र प्रसाद जी तो उनसे मुलाकात, तो उन्होंने कहा कि उनके पास 5 बजे फोन आया कि यहाँ पे मूर्ति तोड़ दी गई है। तो मैंने पूछा कि वो फोन करने वाला कौन था, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई कार्यकर्ता था, उसने मुझे बताया। अब 5 बजे उनका कार्यकर्ता कैसे मौजूद था उनसे मैंने पूछा, तो फिर बात बताने लगे कि मुझे खुद नहीं पता है कि मेरा कार्यकर्ता था या नहीं था।
नवादा के हालात के बारे में बता रहे थे बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार। देश भर में महिलाओं के मुद्दे समझने के लिए निकली है बीबीसी शी की टीम। मैंने बात की सीरीज की प्रोड्यूसर दिव्या आर्य से और पूछा कि अभी उनकी टीम कहां पहुंची है।
बीबीसी शी इस वक्त नागपुर में है, जहां पर हम सभी जानते हैं कि वो अपने संतरों के लिए जाना जाता है, और वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो ठीक भारत के बीचों बीच, लगभग जैसे भारत की नाभि हो, वहां बसा हुआ है, और इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, और यहाँ पर ही बी आर अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। तो एक राजनीतिक तौर पर काफी सजग एक जगह है, और यहीं पर हमने मुलाकात की यूनिवर्सिटी की बहुत सारी लड़कियों से।
कुछ शहरों के वहाँ की लड़कियों के या महिलाओं के अपनी कुछ बातें, अपनी कुछ समस्याएं, अपनी कुछ एक मुद्दे होते हैं, यहाँ पे आपको क्या ऐसा लगा?
कुछ बातें मुझे ऐसा लगा है बीबीसी शी के इस पूरे सफर के दौरान, जो पटना, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, अब ये चौथा शहर है, कि कुछ बातें तो एकदम वैसी ही हर जगह निकल के आती हैं, जैसे शादी के का एक दबाव होना, शादी की वजह से करियर में आगे ना बढ़ पाना, अंतर धर्म में जो विवाह है उसके बारे में चर्चा की लड़कियों ने, और कहा कि इसके बारे में मीडिया जिस तरह से बात करता रहा है वो एक बहुत ही नेगेटिव तरीका रहा है, जिसमें कि भय ज्यादा निकल के आता है। इस तरह से शायद हम लोग मीडिया में काम करने वाले लोग शायद इस नजरिए से ना सोचते हों, पर हमारी बात का असर हमारी ऑडियंस पर कैसा पड़ रहा है ये उससे हमें समझने को मिला।
ऐसे छोटे छोटे सिटीज या शहरों से अगर किसी ने शादी कर ली तो वो जिसने शादी की उसे क्या पनिशमेंट मिलती है वो दिखाया जाता है, रादर कि उनको कैसे सपोर्ट किया सबने वो नहीं कवर किया जाता है। तो इससे ना एक डर बैठता है सबसे, पीपल लाइक इफ पीपल वांट टू कम आउट ऑफ द मेंटालिटी दे हैव दैट थिंग इन माइंड कि नहीं यार घर से प्रेशर है, घर से ये हो जाएगा, घर से वो हो जाएगा, सो दैट नीड्स टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू मी।
एक और बात जो सामने निकल के आई वो एक तरह से जैसे कहेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि औरतों और मर्दों के लिए जो अलग अलग खांचे एक तरह से बन जाते हैं समाज में कि कौन सा काम मर्दों के लिए है, कौन सा काम औरतों के लिए है। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि खबरें जो परोसी जा रही हैं औरतों को ध्यान में रखते हुए वो भी इस पुरानी सोच को कि औरतों के खांचे और मर्दों के खांचे बटे हैं उसको आगे लेके जा रही है।
मम्मा पेजेस फॉलो करते हैं न्यूज़ के, बट न्यूज़ में भी यही आता है। माई मम्मा यूजेस सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, बट फेसबुक के न्यूज़ फीड में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वो वीडियोज़ आते हैं कि खाना कैसे बनाया जाए, लड़की को फेयर कैसे किया जाए। सो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मीडिया वाले जो न्यूज़ पोस्ट करते हैं जो नॉर्मल जनरली पीपल पढ़ते हैं वो न्यूज़ भी वो लोग ऐसी पोस्ट करते हैं जो जिसमें मसाला हो, जिससे ज़्यादा लाइक्स मिले, ना कि वो न्यूज़ जो एक्चुअली लोगों का मेंटालिटी चेंज करे।
तो दिव्या, इसके बाद बीबीसी शी का अगला पड़ाव कहाँ होने वाला है?
हम निकले थे उत्तर से दक्षिण की तरफ और अब वापस उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चलेंगे पश्चिम और गुजरात के राजकोट में अब हम फिर से औरतों से रूबरू होंगे और हमारे बीबीसी हिंदी के श्रोताओं से भी।
बीबीसी शी की स्टोरीज के लिए आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज और bbchindi.com पर बने रह सकते हैं। और अब बात करते हैं मलाला यूसुफजई की। 6 साल पहले पाकिस्तान की स्वात घाटी में इस्लामी चरमपंथियों द्वारा गोली मारे जाने के बाद वो पहली बार अपने वतन लौटी हैं। उन्होंने नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला। इसके बाद जब वो आज पाकिस्तान पहुंची हैं तो बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी ने उनसे लंबी बातचीत की और पूछा कि इतने लंबे अरसे बाद लौटने के बाद वो अपने देश में क्या बदलाव देखती हैं।
तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। मैंने देखा है कि और वालदेन जो है हमारे बड़े जो है वो बच्चों की तालीम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में लोग जो है औरतों के में जब हम औरतों को एम्पावर करते हैं तो उनको या तालीम देते हैं या उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उसके फ़ायदे को देखते हैं कि किस तरह ये पूरे मुल्क को फ़ायदा देता है। क्योंकि दिस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हम आधी आबादी को पीछे छोड़ेंगे तो मुल्क कैसे आगे जाएगा। तो औरतों का हमारी इकॉनमी में इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वी सी दैट इन पाकिस्तान। और रिसेंटली PSL भी हुआ, फॉरेन प्लेयर्स आए, बहुत अच्छा गुजरा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है। तो आई एम हैप्पी टू सी दैट अमन है पाकिस्तान में अब और हम तरक्की देख रहे हैं।
तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है जो आप मिस करती रही हैं जितना अरसा बाहर रही?
हर एक चीज़ मिस की, फ्रॉम दोस्तों से लेके अपने रिश्तेदारों तक, अपने उन गलियों और स्कूल तक, और यहाँ तक कि हमें तो स्वाद की वो खूबसूरत पहाड़ और नदियाँ वगैरह याद थी, लेकिन कभी कभार वो कचरा, वो गंद और वो गंदियाँ नालियाँ भी हमें बहुत याद आती थी। क्योंकि जब आपको एक चीज़ की कदर व कीमत तब नहीं पता होती जब तक आप उसको खो ना दे, और जब हमने स्वाद को खोया तब हमें पता चला कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और हमने तो फिर बाहर मुल्क भी देखे लेकिन स्वाद जैसी खूबसूरत जगह नहीं मिली। तो हमने पाकिस्तान के हर एक हिस्से को, पाकिस्तान के हर एक चीज़ को हमने मिस किया है, खाने से लेकर लोगों तक और ख़ूबसूरत वादियों तक।
अच्छा, आपने बताया आप क्रिकेट तो फॉलो करती हैं लेकिन क्या आप सियासत को भी फॉलो करती हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कल ही आपने ये कहा कि तालीम और सेहत जैसे मसाइल ये सियासी नहीं हैं, तो एक्चुअली आप क्या कहना चाह रही थी?
मैं तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को फॉलो करती हूँ और हमारे मुल्क में इन जैसे इश्यूज़ पे फोकस बिल्कुल होता ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो दूसरी चीज़ों पे वो आर्ग्यू वगैरह करती है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे को करप्ट कहता है तो दूसरा तीसरे को करप्ट कहता है, और ऐसे किस्म की वो लड़ाई जारी है, वर्बल लड़ाई जो है। तो मेरे ख्याल में इनको इन इश्यूज़ पे भी फोकस करना चाहिए, तालीम के बारे में बात करनी चाहिए, हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए, और ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि इनमें सब केस पे सबको एक होना चाहिए और इसमें किसी वो कोई इसी इख्तलाफ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर बच्चे का हक़ है कि वो اعلیٰ تعلیم حاصل کرے وہ پوری تعلیم حاصل کرے. اور اب ایک نون فیکٹ ہے کہ اس کی جو بینیفٹس ہیں پورے ملک کو ملیں گے اور پوری اکانومی کو ملیں گے, کیونکہ جو پولیٹیشین جو وعدے کرتے ہیں وہ اچھے صحت اور اچھے تعلیم کے بغیر نہیں پاسبل.
آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنی ترجیحات بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟
بالکل, ترجیحات بہتر بنائیں. اپنے الیکشنز ابھی ہونے والے ہوں گے تو اس میں ایجوکیشن کو پہ بہت زیادہ فوکس دیں, خاص طور پر بچیوں کی تعلیم پہ فوکس کریں, اور اپنے مینڈیٹ میں لکھیں کہ آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی ساری بچیاں اسکول جائیں.
تو سیاست میں آنے کا ارادہ بھی ہے؟ آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں, تو اب بھی وہ خواہش ہے آپ کی؟
نہیں جی, پرائم منسٹر نہیں بننا, کیونکہ سیاست جو ہے اس میں بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اور میں نے یہ خواب تب دیکھا تھا جب میں 11-12 سال کی تھی, اور جب سوات میں امن نہیں تھا, جب دہشت گرد تھے وہاں پہ, تو مجھے لگا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گی اور پھر میں اپنے ملک کے سارے مسائل حل کر دوں گی. لیکن ایسا ہے نہیں ہے حقیقت میں, تھوڑا اور کمپلیکیٹڈ ہے. تو لیکن آپ چینج کسی بھی طریقے سے لا سکتے ہیں, چاہے آپ اپنی آواز اٹھائے, کیمپیننگ کرے, پرائم منسٹر بنے, پریزیڈنٹ بنے, ٹیچر بنے, ڈاکٹر بنے, چینج از پاسبل تھرو آل دیز ویز. تو اپنی محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, تو میں اپنا کام جاری رکھوں گی تھرو مائی ایکٹیویزم.
2018 الیکشن کا سال ہے, آپ ووٹ ڈالنے آئیں گی پاکستان؟
دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں, اگر اسکول اس کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہو تو آئی ڈیفینیٹلی کنسیڈر دیٹ.
آپ نے اپنے ووٹ کی رجسٹریشن وغیرہ کروا لی یا ابھی کروانی ہے وہ بھی؟
اس کے بارے میں نے بالکل سوچا نہیں تھا, لیکن آپ نے مینشن کیا تو آئی تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا کرنا ہے.
تو آپ کا, آپ ووٹر بن جاتی ہیں, آپ کا ووٹ بھی رجسٹر ہو جاتا ہے اور آپ پاکستان آتی بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے ووٹ کا حقدار پاکستان میں کون ہو سکتا ہے, یا کسی پولیٹیشین میں کیا کوالٹیز ہیں جو آپ دیکھتی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے؟
فی الحال تو ابھی تک تو پارٹیوں نے ابھی تک انہوں نے وہ مینڈیٹ وغیرہ نہیں بتایا, تو ہم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن میرے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کہ وہ کس طرح پاکستان کو بہتر بنا سکتے, تو اس میں ایجوکیشن جو ہے بہت اس کا اہم کردار ہے, تو وہ کس طرح ایجوکیشن میں فوکس کریں گے اور عورتوں کی تعلیم اور امپاورمنٹ کے لیے وہ کیا کریں گے.
اچھا ملالہ, آپ جہاں بہت سے لوگ آپ پہ فخر کرتے ہیں پاکستان میں, وہیں بہت سے آپ پہ تنقید کرنے والے بھی ہیں, بلکہ اب تو یہاں ایک ملالہ ہیٹرز کے نام سے ایک اصطلاح بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. آج ایک بہت چھوٹا سا سیگمنٹ سوسائٹی کا, لیکن وہ بہرحال اینٹی ملالہ ڈے بھی منا رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گی ان ہیٹرز سے؟
پہلے تو کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی آپ کی کوئی شکایت ہے, کچھ ہے جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, آئی ایم ہیپی ٹو ٹاک. لیکن میرے خیال میں بہت ہی چھوٹی فیصد, بہت ہی چھوٹی پرسنٹیج کے لوگ ہیں, اور پورا جو پاکستان ہے, باقی جو پاکستان ہے, بہت محبت کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, وہ میرے میسج کو سمجھتے ہیں. اور میں لوگوں سے کہوں گی کہ آپ میرے میسج کو سمجھیں. میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے یو نو ایز اے سیلیبریٹی ملالہ ایکسیپٹ کریں, یا مجھے کوئی عزت وغیرہ دے. میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا. آل آئی وانٹ از کہ لوگ جو ہے میرے میسج کو سمجھے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دے, یہی میرا میسج ہے. کوئی یہ کرے تو میں کہوں گی کہ بس میرے لیے سپورٹ ہے.
آپ پہ تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی ایجنڈے کے تحت فورن پاورز کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کھڑی ہیں, تو اس قسم کی باتیں جب آپ سنتی ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟
پہلے تو میں اس قسم کی باتیں نہیں سنتی, نہ میں سوشل میڈیا پہ یہ فالو کرتی ہوں, نہ میں میڈیا پہ دیکھتی ہوں, تو پہلے تو ان کا میسج مجھ تک پہنچتا بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ایجنڈا لوگ کہتے ہیں کہ ایجنٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, اب میں تو مجھے تو کچھ ثبوت آج تک کسی نے نہیں دیا, یا میں نے اگر کچھ کہا ہو جس سے لگتا ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ ہوں, میں تو آئی ایم ملالہ اینڈ آئی جسٹ بلیو ان گرلس ٹو ہیو کوالٹی ایجوکیشن. اگر اس کا کسی ایجنڈے کے ساتھ کام ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن اس کے علاوہ تو آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ ان کے کیا ریزنز ہیں.
آپ سن رہے تھے ملالہ یوسفزئی کا ایکسکلوسیو انٹرویو. اس سے پہلے کی ودا لیں, مکھیہ سماچار ایک بار پھر.
بی بی سی سماچار. بھارتی انترکش انوسندھان سنگھن اسرو کا گروار کو لانچ کیے گئے سنچار اپگرہ جی سیٹ 6A سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے. بھارت پرشاست کشمیر کے دکشنی حصے میں آج ہوئی 3 مٹبھیڑوں میں اب تک 11 چرم پنتھیوں کے مارے جانے کی سوچنا ہے. اس کے علاوہ سرکشا بل کے 3 جوان اور 2 عام ناگرک بھی مارے گئے ہیں. پوپ فرانسس نے ایسٹر کے موقع پر دنیا کے بڑے نیتاؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ سبھی مل کر سیریا میں چل رہے گرہ یدھ کو سماپت کرنے کی کوشش کریں. امریکہ اور دکشن کوریا کے بیچ ایک سنیکت سینیہ ابھیاس شروع ہو گیا ہے. اس سینیہ ابھیاس میں دونوں دیشوں کے 300,000 سے ادھک سینک حصہ لے رہے ہیں. بی بی سی سماچار.
بی بی سی ہندی سیوا کی دوسری سبھا دن بھر کے اس انک میں اتنا ہی. آج اسٹوڈیو سنبھالا دیپک جسروٹیا نے, فیس بک پر آپ تک یہ کارکرم پہنچایا بھومکا نے. کل صبح 6:30 بجے نمسکار بھارت کارکرم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. तब तक आप जुड़े रहिए bbchindi.com से। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार, शुक्रिया।